एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्ते।
और मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान। आज हम और आप मिलकर गोता लगाएंगे एक बहुत ही दिलचस्प किताब में, ऑस्टिन क्लियोन की शो योर वर्क।
हाँ, शो योर वर्क।
और देखिए, ये किताब आज के समय में इतनी जरूरी क्यों लगती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कुछ तो कर ही रहे हैं, कुछ बना रहे हैं या सीख रहे हैं।
बिल्कुल, या दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
हाँ, और अक्सर ये सवाल मन में आता है कि भाई अपना काम, अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं कैसे, वो भी बिना ऐसे लगे कि हम कुछ बेच रहे हैं, मतलब एक सेल्समैन की तरह ना लगे।
सही कहा। और ये किताब इसी मुश्किल का एक तरह से हल बताती है। क्लियोन कहते हैं कि अपने काम को छुपा कर मत रखो, उसे बनाने की जो प्रक्रिया है ना, उसको साझा करना सीखो।
अच्छा,
प्रक्रिया को। हाँ, इससे ना सिर्फ आपकी पहचान बनती है, बल्कि आप अपने जैसे सोचने वाले लोगों से भी जुड़ते हैं। और ये उन सबके लिए है जो सोचते हैं कि अरे, मेरा काम अभी परफेक्ट कहाँ हुआ है दिखाने लायक।
ये तो दिलचस्प है। तो चलिए पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात हो जाए। ऑस्टिन क्लियोन, वो खुद को कहते हैं एक लेखक जो चित्र भी बनाता है, मतलब अ राइटर हु ड्रॉज, है ना अनोखा?
हाँ, उनका अंदाज वाकई बहुत अलग है। वो ओहायो में पले बढ़े और अब ऑस्टिन टेक्सास में रहते हैं, और उनकी जो पहचान बनी ना, वो असल में उनके ब्लॉग से और उनकी एक खास तरह की कविताओं से शुरू हुई, न्यूज़पेपर ब्लैकआउट कविताएं।
अरे हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। वो अखबार के शब्दों को काला करके कविता बनाते हैं।
बिल्कुल, सोचिए, अखबार उठाया, उसमें से कुछ शब्दों को काले मार्कर से ढक दिया और जो शब्द बचे उनसे एक नई कविता बन गई। ये दिखाता है कि वो शुरू से ही कितने एक्सपेरिमेंटल रहे हैं और अपने आइडियाज को खुले तौर पर शेयर करते आए हैं।
और शायद इसीलिए वो शो योर वर्क जैसे विषय पर लिखने के लिए एकदम सही इंसान है। मतलब उन्होंने जो सलाह इस किताब में दी है वो सिर्फ थ्योरी नहीं है।
हाँ, उन्होंने खुद ये सब करके देखा है, खुद इसी रास्ते चलकर अपनी पहचान बनाई है। वो एक तरह से पुरानी दुनिया की कला और आज की डिजिटल शेयरिंग के बीच एक पुल जैसे हैं।
उनकी एक किताबों की तिकड़ी भी काफी मशहूर है ना?
हाँ बिल्कुल, पहली थी स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, मतलब एक कलाकार की तरह आइडियाज कैसे चुराएं, या यूं कहें कि प्रेरणा कैसे लें। दूसरी यही शो योर वर्क, कि भाई जो बनाया है उसे दुनिया को दिखाओ कैसे। और तीसरी है कीप गोइंग, यानी लगे रहो, रुके नहीं।
तो शो योर वर्क इस त्रयी का दूसरा और शायद बहुत अहम हिस्सा है। ये बताता है कि अपने विचारों को दुनिया तक कैसे ले जाएं, और उनकी सलाह, जैसा आपने कहा, अकादमिक नहीं, उनके अपने अनुभव पर आधारित है।
बिल्कुल, अब आते हैं किताब के मूल आइडिया पर। क्या है ये शो योर वर्क असल में?
हाँ, मतलब इसका सार क्या है?
देखिए, सरल शब्दों में कहें तो ये किताब एक प्रैक्टिकल गाइड है उन सभी लोगों के लिए, चाहे वो कलाकार हों, लेखक हों, कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हों, छात्र हों, या बस अपने शौक के लिए कुछ करने वाले हों।
जो कुछ बनाते हैं और उसे दुनिया के साथ बांटना चाहते हैं।
हाँ, पर शायद डरते हैं या झिझकते हैं, सोचते हैं कि अरे, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, या मेरा काम उतना अच्छा नहीं है।
और इसका जो सबसे बड़ा और मैं कहूंगी शायद थोड़ा क्रांतिकारी तर्क है, वो ये है कि हमें अपने काम को तब तक छुपाकर नहीं रखना चाहिए जब तक वो एकदम परफेक्ट ना हो जाए।
बिल्कुल, क्लियोन कहते हैं कि इसके बजाय उसे बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें आपकी गलतियां, आपकी सीख, आपके प्रयोग सब शामिल हैं, उसको साझा करना कहीं ज्यादा फायदेमंद है।
ये उस पुरानी सोच को चुनौती देता है कि महान लोग, मतलब जीनियस लोग, अकेले बंद कमरों में काम करते हैं, जिसे क्लियोन लोन जीनियस मिथ कहते हैं।
सही कहा, ये किताब हमें एक तरह से अपनी खोल से बाहर निकालती है, वो सोच जो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पर टिकी है उससे हटाकर एक ज्यादा खुली, पब्लिक और प्रोसेस पर ध्यान देने वाली सोच की तरफ ले जाती है।
अच्छा, मतलब प्रोडक्ट से प्रोसेस पर फोकस।
हाँ, ये सिखाती है कि अपने काम करने के तरीके को कैसे डॉक्यूमेंट करें, मतलब रिकॉर्ड करें, और रोजमर्रा की छोटी छोटी झलकियां कैसे शेयर करें। ये खुद को प्रमोट करने का एक ज्यादा सच्चा और कह सकते हैं कम डरावना तरीका है।
तो कुल मिलाकर किताब का लक्ष्य है आज के क्रिएटर्स को सफल होने का एक नया, ज्यादा मानवीय और टिकाऊ रास्ता दिखाना, जहां शेयरिंग बोझ ना लगे बल्कि मजेदार हो, आपके काम का हिस्सा हो।
बिल्कुल ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, किताब के कुछ मुख्य अध्यायों या विचारों को देखते हैं।
हाँ जरूर, पहला अध्याय ही देखिए, उसकी हेडिंग है आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। यहीं से वो उस लोन जीनियस वाली सोच पर चोट करते हैं।
हाँ, वो कहते हैं कि भाई क्रिएटिविटी अक्सर अकेले में नहीं बल्कि एक समूह में, एक माहौल में पनपती है।
और यहीं पर वो एक शब्द का जिक्र करते हैं, सीनियस।
सीनियस?
ये शब्द संगीतकार ब्रायन एनो का दिया हुआ है।
सीनियस? ये जीनियस से अलग कैसे है?
देखिए, जीनियस एक व्यक्ति पर फोकस करता है ना, लेकिन सीनियस एक पूरे सीन, एक माहौल, एक समुदाय की मिलीजुली क्रिएटिविटी की बात करता है। मतलब आइडियाज अकेले दिमागों में नहीं पनपते, वो लोगों के बीच बातचीत से, लेनदेन से निखरते हैं।
अच्छा, तो ग्रुप एनर्जी की बात है।
हाँ, और क्लियोन हमें शौकिया यानी एमएचओ मानसिकता अपनाने को भी कहते हैं।
शौकिया, उसका क्या मतलब हुआ यहाँ?
उनका मतलब है कि एक नौसिखिए की तरह उत्सुक रहो, हमेशा सीखने को तैयार। जो शौकिया होते हैं उन पर एक्सपर्ट होने का प्रेशर नहीं होता ना।
हाँ, ये तो है।
तो ज्यादा खुलकर प्रयोग कर सकते हैं, गलतियां करने से डरते नहीं। और क्लियोन मानते हैं कि यही खुलापन क्रिएटिविटी के लिए बहुत जरूरी है।
ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, अब आते हैं अध्याय दो पर। ये शायद इस किताब का कह सकते हैं दिल है। प्रक्रिया सोचें, उत्पाद नहीं।
हाँ, ये सबसे जरूरी पॉइंट्स में से एक लगता है।
ये कहता है कि सिर्फ अपना फाइनल चमचमाता हुआ रिजल्ट दुनिया को मत दिखाओ, बल्कि उसे बनाने की जो पूरी कहानी है, जो पूरी यात्रा है, वो साझा करो।
बिल्कुल, क्योंकि लोग अक्सर ये जानने में ज्यादा रुचि रखते हैं कि कोई चीज बनी कैसे, उसके पीछे मेहनत क्या थी, सोच क्या थी, मुश्किलें क्या आईं।
और क्लियोन यहाँ एक बड़ी प्रैक्टिकल सलाह देते हैं, अपने काम के डॉक्यूमेंटेरियन बने। मतलब जो आप करते हैं उसे डॉक्यूमेंट करें, रिकॉर्ड करें।
डॉक्यूमेंटेरियन बनना, जैसे नोट्स लिखना या फोटो लेना।
हाँ, कुछ भी जो भी आपकी प्रोसेस को दिखाता हो, आपके रफ स्केच, आपके नोट्स, आपके बदलते हुए विचार, कोई मुश्किल आई तो वो, उससे सीखा क्या, ये सब।
और इसे रिकॉर्ड करना सिर्फ दूसरों के लिए ही दिलचस्प नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खुद हमें भी अपने काम करने के तरीके को बेहतर समझने में मदद करता है। एक तरह से अपने काम का कच्चा चिट्ठा तैयार करना है ये।
समझ गए। इसके बाद अध्याय 3 कहता है, रोज कुछ छोटा साझा करें। यहाँ जोर है रेगुलरिटी पर।
हाँ, परफेक्ट पोस्ट का इंतजार करने की बजाय रोज कुछ ना कुछ छोटा सा शेयर करो। कोई अधूरा सा आइडिया, कोई स्केच, कोई नई बात जो सीखी।
लेकिन एक सवाल आता है मन में, क्या रोज कुछ साझा करने से लोग बोर नहीं हो जाएंगे, या ये बस शोर जैसा नहीं लगेगा?
अच्छा सवाल है, और क्लियोन इसका जवाब भी देते हैं। वो एक टेस्ट बताते हैं, सो व्हाट टेस्ट।
सो व्हाट टेस्ट?
हाँ, मतलब कुछ भी शेयर करने से पहले खुद से पूछो, सो व्हाट, क्या ये किसी और के लिए किसी भी तरह से उपयोगी है? क्या ये दिलचस्प है? क्या इससे किसी को कुछ सीखने को मिलेगा या कोई प्रेरणा मिलेगी?
अच्छा, तो ये हमें सिर्फ अपने बारे में ही बातें करने से रोकता है।
बिल्कुल, ये हमें वैल्यू ऐड करने पर फोकस कराता है, ये नहीं कि बस कुछ भी डाल दिया।
ये वाकई एक काम की सलाह है। अब अध्याय 4 की बात करें, अपनी जिज्ञासाओं का पिटारा खोलें। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि आप किन चीजों से सीखते हैं, किन लोगों से, किन किताबों से, किन फिल्मों से प्रेरित होते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, इन सबको भी साझा करें, अपनी प्रेरणाओं के बारे में बात करें।
अच्छा, मतलब अपने इन्फ्लुएंस शेयर करना।
हाँ, ये दिखाता है कि आपकी दिलचस्पी किन चीजों में है, आप किन विचारों की दुनिया में रहते हैं, और इससे क्या होता है कि आपके जैसे सोचने वाले लोग आपसे जुड़ते हैं।
हाँ, और क्लियोन ये भी कहते हैं कि अपनी प्रेरणाओं का क्रेडिट देना, मतलब सोर्स बताना, ये ईमानदारी है। ये आपकी ओरिजिनैलिटी पर सवाल नहीं उठाता,
बल्कि ये दिखाता है कि आप एक बड़े डिस्कशन का हिस्सा हैं। इससे भरोसा भी बनता है।
सही बात है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 6 पर, जो जानते हैं उसे सिखाएं। ये शेयर करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका बताया गया है।
बिल्कुल, जब आप दूसरों को कुछ सिखाते हैं तो ना सिर्फ उन्हें फायदा होता है, बल्कि आपकी खुद की समझ भी ज्यादा साफ और गहरी होती जाती है।
लेकिन कई लोग सोचते हैं कि भाई, सिखाने के लिए तो एक्सपर्ट होना पड़ता है, मैं क्या सिखा सकता हूँ?
क्लियोन इस सोच को भी चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि आपको पीएचडी होल्डर होने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी टॉपिक में दूसरों से सिर्फ एक कदम भी आगे हैं, तो भी आपके पास सिखाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर है।
अच्छा।
हाँ, इसे वो लर्निंग आउट लाउड भी कहते हैं, मतलब सीखते सीखते सिखाना। ये दिखाता है कि आप भी सीख रहे हैं और अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं। ये ज्यादा भरोसेमंद लगता है।
ये तो बहुत राहत देने वाली बात है। अब अध्याय 7 एक जरूरी चेतावनी देता है, ह्यूमन स्पैम ना बने। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि शेयरिंग और सिर्फ अपने प्रचार के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। ये ना हो कि आप 24 घंटे सिर्फ अपनी ही बातें, अपनी ही तारीफें करते रहें।
मतलब सिर्फ मैं, मेरा, मुझे ना हो।
हाँ,
एक अच्छे डिजिटल नागरिक बने, दूसरों को भी सुने, उनके काम की तारीफ करें, उनके काम को आगे बढ़ाएं। बातचीत दो तरफा होनी चाहिए, एक तरफा नहीं।
और यहीं पर उन्होंने वो वैम्पायर टेस्ट का भी जिक्र किया है ना?
हाँ बिल्कुल, वैम्पायर टेस्ट मतलब ऐसे लोगों, जगहों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बचो जो आपकी एनर्जी चूस लेते हैं, जो आपको प्रेरित करने की बजाय थका हुआ या नेगेटिव महसूस कराते हैं। अपनी एनर्जी सही जगह लगाना जरूरी है।
समझ गई। अब अध्याय 8 की बात करते हैं, जो शायद थोड़ा मुश्किल लग सकता है। आलोचना सहना सीखें, लर्न टू टेक अ पंच।
हाँ, क्योंकि जब आप अपना काम पब्लिक में रखते हैं तो तारीफ तो मिलेगी, पर साथ में आलोचना भी आ सकती है। इसके लिए तैयार रहना होगा।
ये तो है।
और यहाँ कियोन सलाह देते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यानी वो आलोचना जो आपके काम को बेहतर बनाने में मदद करे, और बेकार के हमलों या ट्रोलिंग के बीच फर्क करना सीखें। सबके बातों को दिल पर न लगाएं। मजबूत बने, लेकिन इतने भी नहीं कि सीखना ही बंद कर दें। ये संतुलन बनाना मुश्किल है, पर जरूरी है।
बिल्कुल। और अंत में अध्याय 10 हमें याद दिलाता है, टिके रहें, स्टिक अराउंड। ये सफर एक 100 मीटर की दौड़ नहीं, मैराथन है।
सही कहा। सफलता अक्सर उन्हें मिलती है जो लंबे समय तक टिके रहते हैं, लगातार सीखते रहते हैं और बदलते वक्त के साथ खुद को ढालते रहते हैं।
हाँ, वो रातों रात वाली सफलता फिल्मों में ही होती है। असल जिंदगी में धैर्य और निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंसी, यही कुंजी है।
तो ये थे कुछ मुख्य अध्यायों के विचार। अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें तो कुछ बड़े और महत्वपूर्ण थीम्स उभर कर आते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल। पहला और शायद सबसे बुनियादी थीम है प्रक्रिया की पारदर्शिता का मूल्य। ये आइडिया कि सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट ही नहीं, बल्कि उसे बनाने का तरीका, आपकी सोच, आपकी मेहनत, ये सब शेयर करना भी अपने आप में कीमती है।
ये लोगों को आपके काम से ज्यादा गहराई से जोड़ सकता है ना?
हाँ। दूसरा बड़ा थीम है प्रतिस्पर्धा से ज्यादा समुदाय पर जोर। वो सीनियर्स वाली बात यहाँ फिर से आती है, मतलब वो कलेक्टिव क्रिएटिव एनर्जी जो अकेले काम करने से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है।
तो दूसरों से मुकाबला करने की बजाय उनसे सीखो, उन्हें सिखाओ, मिलकर आगे बढ़ो। ये है आइडिया।
बिल्कुल। तीसरा महत्वपूर्ण संदेश है पूर्णता से ज्यादा निरंतरता, परफेक्शन से ज्यादा कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा थोड़ा शेयर करना, भले ही वो परफेक्ट ना हो, लंबे समय में ज्यादा असरदार होता है।
हाँ, बजाय इसके कि आप एक मास्टरपीस का इंतजार करते रहे और कुछ भी शेयर ना करें, वो शौकिया वाली उत्सुकता और हिम्मत बनाए रखना बहुत जरूरी है।
चौथा थीम जो मुझे बहुत पसंद आया, सेवा उन्मुख स्वप्रचार, सर्विस ओरिएंटेड सेल्फ प्रमोशन।
हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब खुद का प्रचार सीधे सीधे मत करो, बल्कि इस तरह करो कि उसे दूसरों की मदद हो।
जैसे कुछ सिखाकर, कोई उपयोगी जानकारी देकर या अच्छी कहानियां सुनाकर। जब आप दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं तो आपकी पहचान और इज्जत अपने आप बनती है। ये ज्यादा सच्चा तरीका है।
और पांचवा थीम है लचीलापन और लंबी सोच, रेजिलियंस और लॉन्ग टर्म विजन, आलोचनाओं का सामना करने की हिम्मत रखना। और ये समझना कि पहचान बनाने और काम में सफल होने में वक्त लगता है। छोटी मोटी असफलताओं या आलोचनाओं से हार ना मानना और लंबे समय तक मैदान में डटे रहना।
बिल्कुल।
ये सारे सिद्धांत अगर देखें तो हमारे यहाँ भारत में भी कितने लागू होते हैं। चाहे कोई फ्रीलांसर हो, छोटा बिजनेस चला रहा हो, कलाकार हो या किसी कंपनी में काम कर रहा हो।
हाँ, यहाँ भी ज्ञान और प्रक्रिया शेयर करने से न सिर्फ प्रोफेशनल कम्युनिटीज मजबूत होती हैं, बल्कि ऑनलाइन दुनिया में एक सच्ची और भरोसेमंद पहचान बनाने में भी बहुत मदद मिलती है।
करते हैं। पहली है, आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद होने की जरूरत है।
हाँ, ये लाइन बहुत ताकत देती है। मतलब ऑथेंटिक रहो, किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो, अपनी आवाज अपने अंदाज में काम करो और उसे शेयर करो।
दूसरी यादगार सलाह, अपने काम के डॉक्यूमेंटेरियन बने। ये बहुत सीधी और करने लायक बात है, बस अपनी प्रोसेस को रिकॉर्ड करने और शेयर करने की आदत डालो।
हाँ, इससे वो टालम टोल और क्या शेयर करूं वाला डर कम होता है।
एक और बेहतरीन विचार, वही साझा करें जो आपको पसंद है, और जिन्हें वही चीजें पसंद है वे आपको ढूंढ लेंगे।
ये बताता है कि जब आप अपनी सच्ची दिलचस्पी और जुनून शेयर करते हैं तो आप अपने आप उन लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी तरह सोचते हैं। एक असली कम्युनिटी बनती है इससे।
और ये वाला, जो जानते हैं उसे सिखाएं, ये उदारता और ज्ञान बांटने के महत्व को दिखाता है। सिखाने से न सिर्फ दूसरों का भला होता है, बल्कि आपकी अपनी एक्सपर्टाइज और अथॉरिटी भी बढ़ती है।
एक और दिलचस्प बात जो क्लियोन ने हॉवर्ड एकिन के हवाले से कही है, अपने विचारों के चोरी होने की चिंता ना करें। यदि आपके विचार अच्छे हैं तो आपको उन्हें लोगों के गले उतारना पड़ेगा।
वाह, इसका मतलब तो गहरा है।
हाँ, मतलब सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं है, उसे लागू करना और लोगों तक पहुंचाना ज्यादा बड़ी चुनौती है। इसलिए आइडिया को छिपाने से ज्यादा उसे शेयर करने और उस पर काम करने में दम है।
ये सभी विचार सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? कुछ प्रैक्टिकल तरीके सोचे जा सकते हैं?
हाँ बिल्कुल, जैसे कलाकारों या लेखकों के लिए इसका मतलब हो सकता है रोज अपने स्केचबुक का एक पन्ना शेयर करना, या किसी पेंटिंग के बनने की प्रोसेस का छोटा वीडियो बनाना,
या अपने रिसर्च नोट्स का कोई हिस्सा शेयर करना।
हाँ, और जैसे कोई प्रोफेशनल है या कोई उद्यमी, तो वो किसी मुश्किल प्रोजेक्ट से क्या सीखा इस पर ब्लॉग पोस्ट लिख सकता है, या ट्विटर पर अपने फील्ड से जुड़ी छोटी छोटी टिप्स दे सकता है,
या अपने स्टार्टअप की कहानी, उसके उतार चढ़ाव ईमानदारी से शेयर कर सकता है। इससे भरोसा बनता है।
बिल्कुल, छात्रों या कुछ नया सीखने वालों के लिए ये लर्निंग आउट लाउड हो सकता है। जैसे कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट समझा तो उसे अपने शब्दों में लिखकर शेयर कर दिया,
या अपने बनाए हुए नोट्स दूसरों के साथ शेयर कर दिए। इससे खुद की समझ भी पक्की होती है और दूसरों को भी मदद मिलती है।
और यहाँ तक कि अगर आपका कोई शौक है, मान लीजिए गार्डनिंग है या कुकिंग है या कोई क्राफ्ट है, तो उसकी प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंट करना और शेयर करना भी शो योर वर्क ही है।
हाँ, इससे उसी शौक वाले दूसरे लोगों से जुड़ाव भी बन सकता है।
तो सबसे बड़ा जो मेंटल शिफ्ट है जो ये किताब सुझाती है, वो है परफेक्शनिज्म को छोड़कर पार्टिसिपेशन की ओर बढ़ना।
मतलब ये इंतजार करना छोड़ देना कि जब सब कुछ एकदम सही हो जाएगा तब दिखाएंगे।
हाँ, इसके बजाय रोज छोटे छोटे लगातार कदम उठाना और अपनी यात्रा में दूसरों को शामिल करना।
तो इस पूरी बातचीत से हमारे लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही? अगर मैं अपनी बात कहूँ तो शायद ये कि अपनी अधूरी प्रक्रिया, अपनी कोशिशों और यहाँ तक कि अपनी गलतियों को साझा करना कमजोरी नहीं है, ये साहस और ताकत की निशानी है।
हाँ, और वो शौकिया होने में, सीखते रहने में भी एक अलग तरह की शक्ति है।
बिल्कुल।
और मेरे लिए एक और महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आई कि स्वप्रचार को एक सेवा के रूप में देखना। जब हमारा ध्यान दूसरों की मदद करने, उन्हें कुछ वैल्यू देने पर होता है, चाहे वो ज्ञान हो, प्रेरणा हो या मनोरंजन, तो प्रमोशन अपने आप हो जाता है बिना किसी दिखावे के। ये ज्यादा टिकाऊ तरीका है।
हाँ, ये ज्यादा सम्मानजनक भी है।
तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं आज, सिर्फ आज, अपने काम, अपनी पढ़ाई या अपने किसी शौक की प्रक्रिया का सिर्फ एक छोटा सा, शायद अधूरा सा हिस्सा साझा करने से आपके और दूसरों के नजरिए में क्या फर्क पड़ सकता है, जरा सोचिएगा इस पे।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।